हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। ध्रुव की बैचलर पार्टी चल रही थी। ध्रुव का उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन फिर भी वो पार्टी के अंदर गया था। युग के थोड़ा इंसिस्ट करने पर उसने वाइन का एक ग्लास लिया था। इस मामले में ध्रुव का नेचर बिल्कुल कृषा की तरह था, उसे ड्रिंक हजम नहीं होती थी। न जाने क्या सोचते हुए ध्रुव ने काफी सारी पी ली थी और वो अपने घर आया था। घर के अंदर तारा और ध्रुव के अलावा और कोई मौजूद नहीं था। तारा के कमरे में आहट सुनकर ध्रुव वहां पर गया। तारा के सामने आने और नशे में होने की वजह से ध्रुव अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। हालांकि तारा होश में थी और वो ध्रुव को खुद से दूर रखने की पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन अब हालात उसके हाथ में नहीं रहे थे। तारा जब वहां से जाने को हुई तब ध्रुव ने उसे पकड़कर खींचकर अपने करीब कर लिया था और उसके होठों को अपने होठों की कैद में ले लिया था। तारा भी सब कुछ भूलकर बस ध्रुव में खो जाना चाहती थी। उनका वो नॉर्मल सा किस काफी इंटेंस होता जा रहा था। तारा के हाथ ध्रुव की गर्दन पर थे तो वहीं ध्रुव ने अपने हाथों से तारा का चेहरा कसकर पकड़ रखा था। जब तक ध्रुव खुद ब्रेथलेस नहीं हो गया था, वो तारा को सब कुछ भूलकर किस किए जा रहा था। ध्रुव से अलग होते ही तारा को अपनी गलती का एहसास हुआ। वो गहरी सांस ले रही थी। उसने ध्रुव से कहा, आई बिग यू ध्रुव, प्लीज अपने कमरे में चले जाओ, ज्यादा देर तक मैं खुद के इमोशंस को संभाल नहीं पाऊंगी। ध्रुव ने एक नज़र तारा की तरफ देखा जो तेज सांसें ले रही थी। ध्रुव ने ना में सिर हिलाया और तारा को खींचकर अपने बेहद करीब कर लिया। तारा उसे खुद से दूर धकेलते हुए बोली, नहीं तुम होश में नहीं हो, प्लीज प्लीज मत करो। इतना कहकर तारा वहां से जाने को हुई। उसकी आंखों में आंसू आ गए थे क्योंकि ध्रुव को खुद से दूर करना उसके लिए मुश्किल हो रहा था। ध्रुव उसके पीछे गया और तारा को पीछे से हक कर लिया था। ध्रुव ने तारा के कान के पास आकर बिल्कुल धीमी हस्की वॉइस में कहा, जानता हूँ होश में नहीं हूँ, लेकिन कुछ भुला नहीं हूँ। कल मेरी मेहर से शादी होने वाली है, सब अच्छे से याद है। मेहर से शादी भी और ये बात भी कि ये दिल आज तक अब तक सिर्फ तुम्हारे लिए धड़का है। आई लव यू तारा, आई रियली लव यू। ध्रुव के मुंह से प्यार का इजहार सुनकर अब तारा खुद को रोकना भी नहीं चाहती थी। उसने ध्रुव को खुद से दूर करने की कोशिश करना बंद कर दिया था। ध्रुव ने तारा को पकड़कर उसका चेहरा अपनी तरफ किया। वो तारा की आंखों में देखते हुए बोला, आई वॉन्ट यू तारा, आई ओनली वॉन्ट यू। तारा ने हाँ में पलके झपका दी। हालांकि अंदर से वो अच्छे से जानती थी कि ध्रुव का साथ देकर वो खुद की तकलीफें बढ़ाने के अलावा और कुछ नहीं कर रही थी। तारा के हाँ कहते ही ध्रुव ने फिर से उसके होठों को अपनी गिरफ्त में ले लिया था। किस करते हुए उसने तारा को दीवार के लगा दिया था। अब उसके होठ तारा की गर्दन पर लगे हुए थे और तारा उस लम्हे में खोती जा रही थी। तारा की आंखों में आंसू आ गए थे। अचानक उसने ध्रुव से कहा, मैं जा रही हूँ ध्रुव, हमेशा के लिए तुमसे दूर। ध्रुव के बाद अब तारा के इजहार करने की बारी थी। उसे लगा कि ध्रुव नशे में है, वो कुछ भी कहेगी तो वो भूल जाएगा। उसकी बात सुनकर ध्रुव रुक गया था। उसने तारा का चेहरा अपने हाथों में भर लिया और उसकी आंखों में देखते हुए बोला, नहीं मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा, मैं तुमसे दूर रहना नहीं बर्दाश्त कर सकता हूँ तारा। मुझे बताओ तुम कहाँ जाना चाहती हो, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। तारा के चेहरे पर कड़वाहट भरी मुस्कुराहट उभर आई थी। उसने तुरंत ना में सिर हिलाकर कहा, कहीं नहीं जा रही हूँ, बस देखना चाहती थी कि तुम कितने होश में हो। बिल्कुल भी होश में नहीं हूँ, फिर भी ये दिल तुम्हें अपना बनाने की जिद पर अड़ा है, ध्रुव बोला और उसने तारा को अपनी बाहों में उठा लिया था। अगले ही पल वो दोनों बेड पर थे। ध्रुव तारा के ऊपर आ गया था। किस करते हुए वो दोनों एक दूसरे के कपड़े निकाल रहे थे और अगले ही पल ध्रुव ने अपनी डिजायर्स को पूरा कर लिया था। तारा जानती थी कि ध्रुव के साथ फिजिकल रिलेशन बनाकर वो गलत कर रही है, लेकिन एक आखिरी बार वो भी ध्रुव के क्लोज आना चाहती थी। ये रात उसके लिए मुश्किल जरूरी थी, लेकिन हाँ उसे खुशी थी कि उसने जाने से पहले ध्रुव की हर यादों को खुद के साथ ले लिया था, जिनके सहारे वो पूरी जिंदगी बिता सकती थी। अगली सुबह लगभग 5 बजे के करीब फोन वाइब्रेट होने पर ध्रुव की नींद टूटी। उसने अपना हाथ बढ़ाकर कॉल कट कर दिया था, लेकिन तभी उसने महसूस किया कि वो इस वक्त किसी को अपनी बाहों में समेटकर सोया हुआ था। ध्रुव ने जल्दी से आंखें खोली तो उसके करीब तारा थी। ध्रुव ने अपनी आंखें कसके बंद कर ली। वो मन ही मन बोला, आई होप कल रात मैंने कुछ गलत ना किया हो, वरना मेरे लिए तारा से नजरें मिलना भी मुश्किल हो जाएगा। ध्रुव ने अपना हाथ हल्का सा मूव किया तो वो तारा के सीने से जा लगा था और इसी के साथ उसे एहसास हुआ कि तारा ने कुछ नहीं पहना था। ध्रुव ने जल्दी से अपना मुंह ब्लैंकेट के अंदर डाल लिया। उसे समझते देर नहीं लगी कि कल रात उनके बीच क्या हुआ होगा। ओह शिट, ये मैंने क्या कर दिया, आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ कि मेरा खुद की डिजायर्स पर कंट्रोल न रहा हो। मैं तो नशे में था, लेकिन तुम तो होश में थी तारा, मुझे रोक सकती थी, ध्रुव ने सिर पकड़कर कहा। उसका सर दर्द से फटा जा रहा था। फिर उसकी नजर तारा की तरफ गई जो मासूमियत से उसकी बाहों में इस कदर सिमटकर सोई हुई थी मानो वो दुनिया की सबसे महफूज जगह हो। उसका चेहरा देखकर ध्रुव एक पल के लिए सब कुछ भूल गया था। उसने हल्के से उसके नाक पर किस किया, फिर से मोबाइल वाइब्रेट होने पर ध्रुव को होश आया और वो जल्दी से तारा से अलग हो गया था। ध्रुव को समझ में नहीं आ रहा था कि वो तारा का सामना कैसे करे। उसने तुरंत अपने कपड़े पहने और वहां से चला गया था। वहीं सुबह के 9 बजे के करीब तारा की नींद टूटी तो वो अकेले सोई हुई थी। उसे इस बात का कोई अफसोस नहीं था कि ध्रुव उसे इस हाल में अकेला छोड़कर चला गया है। तो होश में आते ही तुम्हें अपनी गलती का एहसास हुआ होगा, लेकिन मुझे इस बात का कोई पछतावा नहीं है ध्रुव राणा कि कल रात तुमने मुझे मेरी जिंदगी का सबसे अच्छा एहसास किया है। तारा के चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट थी। वो उठकर बैठने को हुई तभी उसके शरीर में भयंकर दुख दर्द उठा और तारा वहीं पर रुक गई थी। तारा ने आह भरते हुए कहा, बस यादें ही अच्छी होती है, बाकी कुछ चीजें सच में बेकार होती है। उसने जैसे तैसे करके अपने कपड़े उठाए और धीरे से चलते हुए बाथरूम में जा रही थी। तारा को अब ध्रुव की शादी अटेंड करने की भी कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि वो जानती थी कि कल रात जो भी हुआ था उसके बाद ध्रुव खुद उसके सामने नहीं आना चाहेगा। यही अच्छा मौका है जब मैं मिली और उसके भाई बहनों को लेकर जा सकती हूँ, तारा ने मन ही मन कहा। उसने वायु को कॉल करने के लिए अपना मोबाइल उठाया तो देखा कि उसमें पहले से ही वायु के मैसेज आए हुए थे। वायु ने मिली और उसके भाई बहनों के रहने का अरेंजमेंट कर दिया था। तारा ने तुरंत मिली को कॉल करके कहा, मिली ऐसा करो, अपनी पैकिंग कर लो, थोड़ी देर बाद में तुम्हें गाड़ी लेने के लिए आएगी जो तुम्हें त्रिपुरा छोड़ देगी। अब से तुम और तुम्हारे भाई बहन वहीं पर रहने वाले हैं, एंड फॉर गॉड सेक वहां जाकर कोई गलत काम मत करना। मेरे भरोसेमंद आदमी ने तुम सबका एडमिशन तक करवा दिया है, तो पढ़ाई पर ध्यान देना और पैसों की चिंता मत करना। थैंक यू सो मच तारा मैडम, इतना आज तक अब उनके लिए किसी ने नहीं किया है, मिली ने मुस्कुरा कर कहा। अब तारा की बारी थी वहां से जाने की। उसने अपना जरूरी सामान लिया और फिर किसी को कुछ बताए युग के विला से निकलने लगी।
जैसे ही तारा घर के बाहर निकली अचानक उसके कदम वहीं पर रुक गए थे। सामने दक्ष की गाड़ी खड़ी हो रखी थी। हालांकि तारा ने तुरंत अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया था, लेकिन दक्ष ने उसे देख लिया था। अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये तारा है, ये युग राणा के घर से बाहर क्यों निकल रही है? इससे पहले कि चाचू इसे यहां देखें मुझे उनका ध्यान भटकाना होगा, दक्ष ने मन ही मन कहा और जल्दी से बैक सीट के शीशे की तरफ आ गया था जहां उसका चाचा मौलिक मल्होत्रा बैठा हुआ था। चाचू, गाड़ी सही होने में थोड़ा टाइम लगेगा, आप ऐसा कीजिए टैक्सी लेकर चले जाइए, वैसे भी आप लंबा सफर तय करके आए हैं, कब तक यहां बाहर गाड़ी में बैठकर परेशान होते रहेंगे, दक्ष ने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा। उसने शीशे को पूरी तरह ब्लॉक कर दिया था, जबकि तारा भी यही चाहती थी कि उसे दक्ष ना देखे। वो जल्दी से वहां से निकल गई थी। मौलिक ने उसकी बात पर हामी भरी और गाड़ी से बाहर आ गया था। दक्ष ने कॉल करके मौलिक के लिए टैक्सी मंगवा ली। वो पूरी तरह श्योर था कि तारा वहां से जा चुकी थी, तो वहीं दक्ष को दूसरी बार देखकर तारा का मन बेचैन हो गया था। मैं ज्यादा सोच रही हूं, बस थोड़ी ही घंटे की बात है, फिर मैं इन सबसे हमेशा के लिए दूर चली जाऊंगी। पता नहीं मेरी ही लाइफ इतनी बुरी क्यों है, जहां जब भी कुछ अच्छा होने को होता है कुछ ना कुछ बुरा नजर आ जाता है। उम्मीद है कि वायु के पास जाने के बाद मुझे इन सबकी शक्ल भी ना देखनी पड़े, तारा ने गहरी सांस लेकर कहा। उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। वहीं मौलिक को भेजने के बाद दक्ष गाड़ी के अंदर आकर बैठ गया था। उसने तुरंत एक आदमी को कॉल करके कहा, मेरे पास बस आज के दिन जितना टाइम है, जब मैं कुछ भी करके ध्रुव और मेहर की शादी को रोक सकता हूं। मैंने तुम्हें एक काम करने को कहा था, वो भी तुम नहीं कर पाए। बस सर, मैंने उसकी डिटेल्स का पता लगा ही लिया है, मुझे शाम तक का टाइम दीजिए, मैं आपको सब कुछ मेल कर दूंगा, सामने से एक आदमी ने जवाब दिया। हाँ, शाम तक का क्यों, रात तक का टाइम ले लो, ताकि जब तक तुम्हारी सो कॉल डिटेल्स बाहर निकाल कर आए मेहर की शादी हो चुकी होगी। इस तरह तीनों पड़ाव भी हमारे हाथों से चले जाएंगे। मुझे उस काम के अलावा कुछ घंटे में एक और काम पूरा चाहिए। एक लड़की की फोटो भेज रहा हूँ, पता करो कि ध्रुव राणा का उसके साथ क्या रिश्ता है। वो युग राणा के विला से निकली थी, दक्ष ने हल्के गुस्से में कहा। वो यहाँ तारा की बात कर रहा था। उसने तुरंत तारा की फोटोज आदमी को भेज दी थी। तारा वहां से अपने घर पहुंच चुकी थी। उसे न्यूयॉर्क के लिए निकलना था, इसलिए वो पैकिंग कर रही थी। तो वहीं दूसरी तरफ राणा मेंशन में आज मेहर और ध्रुव की शादी होने वाली थी। कल रात ध्रुव और तारा के बीच में जो भी हुआ था उसके बाद से ध्रुव खोया हुआ सा था। शादी से पहले जब वो तैयार हो रहा था तब उसके आसपास वीर, अलीजा, अलीशा सब थे और उसका मूड सही करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ध्रुव ठीक से उनकी किसी बात का रिस्पॉन्स भी नहीं कर रहा था। अगर तुम सच में इस शादी से खुश नहीं हो तो मना कर दो, इस तरह मुंह सड़ा कर जाओगे तो सबको पता चल जाएगा कि तुम इस शादी से खुश नहीं हो, वीर ने उसे समझाते हुए कहा। ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूं, ऐसा करो तुम लोग बाहर जाओ, मुझे थोड़ी देर के लिए अकेला रहना है, ध्रुव ने बेरुखी से जवाब दिया और उन सबको बाहर निकाल दिया था। वो उनके लेक्चर नहीं सुनना चाहता था। ध्रुव ने उन्हें तो बाहर निकाल दिया था, लेकिन जैसे ही उसने उनको बाहर निकालने के बाद दरवाजा बंद करना चाहा, उसके सामने युग हाथ बांधे खड़ा था। उसके सामने ध्रुव कुछ नहीं कर सकता था। वहीं दूसरी तरफ दक्ष इस वक्त गुस्से में अपने आदमियों पर चिल्ला रहा था। वो अपनी तरफ से मेहर और ध्रुव की शादी रोकने की हर संभव कोशिश कर रहा था, लेकिन अब हालात उसके हाथ से निकलते जा रहे थे। मेरे पास बस अब यही एक आखिरी रास्ता बचा है कि मैं राणा मेंशन को हाईजैक कर लूं और मेहर को वहां से भगा कर ले जाऊं। तुम सब किसी काम के नहीं हो, इतने क्लू देने के बाद भी एक छोटी सी बात का पता नहीं लगा पाए, दक्ष गुस्से में उन पर चिल्लाकर बोला। तभी उसके पास उसके आदमी का कॉल आया। सॉरी सर, थोड़ा देर हो गया, लेकिन दोनों बातों का पता लग गया है। तारा अग्निहोत्री पिछले दिनों से ध्रुव राणा के साथ उसके घर में रह रही थी। दोनों को काफी जगह नोटिस किया गया है और लगता है उनके बीच में किसी तरह का रिश्ता भी बन रहा होगा। घर के एक हाउस हेल्पर से पता चला है कि दोनों एक दूसरे के लिए काफी खास हैं। उसके आदमी ने तारा के बारे में सारी डिटेल दे दी थी, जिसके बारे में सुनने के बाद दक्ष के चेहरे पर ईविल स्माइल थी। अच्छा, तो मेरे पीठ पीछे ये सब गुल खिलाए जा रहे हैं, दूसरी बात का क्या पता चला? क्या मेरा शक सही था? दक्ष ने भौंहें उठाकर पूछा। 100% सर, वो बच्चे युग राणा और कृषा राणा की बेटी है, जिसे अब तक वो दुनिया से छुपा कर रख रहे थे। वो लड़की अभी मुंबई में है। जैसे ही उसके आदमी ने बताया, दक्ष के चेहरे पर विक्ट्री स्माइल आ गई थी। अब आएगा इस खेल में आमने सामने का मजा। युग राणा जैसे स्ट्रांग पर्सनैलिटी वाले शख्स ने अपनी बेटी को सबसे छुपा कर रखा, मतलब वो उसकी कमजोरी है। मजा आएगा जब तुम सबकी कमजोरी को तुम लोगों की आंखों के सामने खत्म करूंगा, लेकिन उससे पहले तुम्हारा दिल तोड़ना भी जरूरी है, दक्ष खुद से बोला। अगले एक घंटे में उसने अपना पूरा प्लान तैयार कर लिया था और वो राणा फैमिली को इतना बड़ा झटका देने वाला था जिसके बारे में युग और ध्रुव दोनों सपने में भी नहीं सोच सकते थे।